गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे बोलो बोलो जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल निताई गौर प्रेमानंदी हरि बोल मोबाइल को बंद कर दीजिए रिकॉर्डिंग कर रहे ना ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो आज के इस 30 जून के संध्या जागृति में आप सबका स्वागत है। आप सबको पता ही होगा यह अधिक मास चल रहा है, बहुत पवित्र महीना है। आपने जो भी हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया उसको लाखों गुना लाभ आपको इस महीने में मिल रहा है। जो आपने न जानते हुए भी इतनी बार हरे कृष्ण महामंत्र भगवान का नाम उच्चारण किया, लाखों गुना लाभ आपको ऑलरेडी मिल चुका है, आगे भी मिलेगा। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें इसका जानकारी होना बहुत जरूरी है कि आपको क्या मिल रहा है, अवगत होना बहुत जरूरी है कि हम क्या करने वाले हैं। अगर हमको उसका महात्म्य मालूम पड़ेगा तो फिर यही हरे कृष्ण महामंत्र या राम का नाम जो है वो हम और भावना से लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है भाव, उसी भाव को खाली भगवान देखते हैं हमेशा। काम तो बहुत लोग बड़ा और छोटा कर लेते हैं, बहुत लोग सेवा भी कर लेते हैं, लेकिन जिसका भाव श्रेष्ठ है उस व्यक्ति की सेवा भगवान बड़े प्रेम से स्वीकार करते हैं। उस व्यक्ति को भगवान बड़े जल्दी अपना लेते हैं क्योंकि उसका भाव बहुत सही है। और शास्त्र में कई उसके उदाहरण हम देखते हैं कि भाव किसका कैसा है, क्योंकि भगवान का नाम है भावग्राही जनार्दन, भावग्राही, जो किसी भी चीज का कितना बड़ा काम है वो देखते नहीं, उसके पीछे भाव क्या है वो देखते हैं। किसने कितना बड़ा दान दिया वो देखते नहीं, वो दान के पीछे भाव क्या था, मेरा नाम हो जाए, मेरी कीर्ति हो जाए, ये भाव है कि आपकी सेवा के लिए समर्पित है, नाम हो या ना हो, वो बराबर समझते हैं। हम भी समझते हैं ना कभी कभी, तो भगवान को नहीं समझेंगे। तो यही अंतर देवता में और राक्षस में है। राक्षस भी कभी कभी अच्छा काम करते दिखाई पड़ता है, लेकिन उसके पीछे हेतु अलग रहता है। अब भगवान के भक्त अच्छा काम करते हैं, उनके पीछे हेतु अलग रहता है। तो मैं आज आपको श्रीमद् भागवत की एक सुंदर कहानी बताऊंगा कि भगवान भाव अगर सही रहेगा तो आपकी गलतियां भी माफ कर देते हैं। और हम और आप भी ऐसे होते हैं, समझे, हमारे पास कोई एम्प्लॉई है बार बार मिस्टेक करता है, लेकिन आप बोलेंगे सर इसको निकालो मत, ये बहुत सिंसियर है, उसको गलतियां करता है वो, लेकिन जानबूझ के नहीं करता है, वो सिंसियर बहुत है। और दूसरा व्यक्ति उसको बोलेंगे सर ये ना बहुत लुच्चा आदमी है, इसको आप निकाल ही दो, वो काम में अच्छा है लेकिन उसका जो मूड है ना वो सही नहीं, वो संस्था के लिए बहुत हार्मफुल है, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना। कुछ लोग ऐसे उसको कहते हैं विशियस, यानी कि वो कपटी भाव से ही काम करते हैं, काम में बहुत एक्सपर्ट रहते हैं लेकिन इनका जो अंदर का भाव होता है ना वो गलत होता है। तो हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, अच्छा काम करने वाले को भी निकाल लेते हैं क्योंकि उसका जो दिमाग है सही नहीं है। कभी कभी बार बार मिस्टेक करने वाले लोगों को रखते हैं हम लोग, क्योंकि जानते हैं कि ये आदमी सिंसियर है बहुत, क्योंकि सिंसियर है इसलिए आज नहीं तो कल वो सुधरेगा और वो इम्प्रूव करेगा, वो जानबूझ के नहीं करता है, उसको ट्रेनिंग की जरूरत है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल, मतलब इसके अंदर एक अच्छा एम्प्लॉय होने की क्षमता क्या है। आज तो ये नया नया है लेकिन ये आदमी ना आगे जाकर एक अच्छा एम्प्लॉय बन सकता है क्योंकि इसके अंदर सही भाव है, वो काम करने की इच्छा है, वो प्रामाणिक है, ये सिंसियर है बहुत, ऐसा होता है कि नहीं। तो ये कहानी ऐसी भागवत में आती है क्योंकि एक ये महीने में भागवत सुनना बहुत जरूरी है, भागवत की कहानी सुनना बहुत जरूरी है। एक बार इंद्र को मिलने के लिए दुर्वासा मुनि स्वर्ग में आए और वो वैकुंठ से आ रहे थे, तो उन्होंने भगवान का जो महाप्रसादी माला है वो भी लेकर आ रहे थे। जैसे समझो हमें आप हम मायापुर से आएंगे और महाप्रसाद लेकर आएंगे ना, तो भक्ति विधान के लोगों को दे देंगे। तो वैसे वो स्वर्ग वैकुंठ से जब स्वर्ग में आए तो आते हुए उन्होंने भगवान की माला भी लेके आए, तो उन्होंने इंद्र को वो दे दी, जैसे हम देते ना आपके महाप्रसादी या आपके लिए। तो इंद्र उस समय अप्सराओं का नृत्य देखने में मग्न थे, बहुत उनका ध्यान कहाँ था, अप्सरा लोग डांस कर रहे हैं वो देख रहे हैं, राजा है ना वो। दुर्वासा मुनि को इतना प्रेम से स्वागत नहीं किया उन्होंने जितना उनको करना चाहिए था, ऊपर से क्या किया, वो माला को भी इतना कीमत नहीं दिया उन्होंने, वो माला क्या किया, वो हाथी के सूंड पे डाल दिया, बोलते हम लोग कुछ मिल गया ए ले लो ऐसे दे दिया हाथी। अभी हाथी तो हाथी है, उसने क्या किया, उस माला को सूंड से उठाया, जमीन पर पटका और पैसे कुचल दिया। तो दुर्वासा मुनि हंसे ऐसा देखकर। क्यों हंसे? इस भाव से हंसे कि विनाश का लक्षण है ना, लक्षण जो है वो प्रगति का नहीं है, विनाश की ओर जाएंगे ये लोग। भगवान विष्णु की महाप्रसादी माला को खुद ना पहनते हुए हाथी को दिया, हाथी से कुचलवा दिया, केवल एक वो अपराध करने के वजह से देवता लोक का सब कुछ छिन गया, सब कुछ हार चुके वो। राक्षस लोगों ने हमला किया और देवता दैत्य दानव लोगों ने हमला किया और सब कुछ राज्य छीन लिया उनका, यहां तक कि छीन लिया कि सब लोग बेघर हो गए और गुफाओं में छुपकर रहने लगे। राजा थे एक दिन देवता, दानवों ने सब कुछ छीन लिया, उनका राज्य पदाक्रांत कर लिया, देवताओं को भगा दिया, सब लोग जान को बचाकर कोई जंगल में कोई गुफा में छुप छुप के दरिद्र होकर जी रहे हैं। तो देवताओं की माता थी, उसका नाम था अदिति। एक ही पिताजी हैं कश्यप मुनि, उनकी एक पत्नी है दीति, एक पत्नी है अदिति। तो दीति से दैत्य का जन्म हुआ, दानु से दानवों का जन्म हुआ और अदिति से देवताओं का जन्म हुआ। सब लोग भाई भाई है लेकिन है सब लोग अलग अलग। तो उसके बाद में अदिति को रहा नहीं गया कि मेरे पुत्र सब लोग बेघर होकर भटक रहे हैं, कोई राज्य नहीं, कोई संपत्ति नहीं, कोई ऐश्वर्य नहीं, कोई अधिकार नहीं, भिखारियों की तरह दरिद्री होकर भटक रहे हैं, छुप छुप के जी रहे हैं, भय से ग्रस्त होकर जी रहे हैं। तो वो अपने पति के पास आई, उसने कहा कि कुछ करना चाहिए। तो पति ने कहा कि देखो ये ऐसा है ना, ये ऐश्वर्य आ रहा है जा रहा है, संपत्ति आ रही है जा रही है, तो होते ही रहता है, उसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दो। कभी राजा राजा बन के बैठे थे ना वो, फिर अभी ऐसे हो गए, फिर राजा बनेंगे एक दिन। श्रीनिवास प्रभु हरे कृष्णा। तो फिर भी माँ ने कहा नहीं नहीं, मुझे बहुत दुख हो रहा है उनको देखे, क्योंकि माँ तो माँ ही होते ना, माँ का दिल तो बच्चों को देख के बहुत दुखी हो जाता है। तो फिर क्या हुआ, कश्यप मुनि ने कहा कि ठीक है, वो सब लोग मिलकर भगवान के पास गए, सब देवता लोग रो रो कर। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, तुमने अपराध तो किया है फिर भी मैं आपकी रक्षा करूँगा। क्यों बोला भगवान ने ऐसा? क्योंकि उन्होंने अपराध किया लेकिन भगवान के भक्त थे वो, भगवान जानते हैं। अरे चलो ऐश्वर्य आ गया तो अप्सराओं के मंदिर मग्न हो गया आदमी है, लेकिन दिल से मेरा भक्त है वो जानता है। उसका थोड़ा सा क्या हो गया, पतन हो गया, जितना गंभीर होना चाहिए था उसको भक्ति में उतना नहीं रह गया, वो संपत्ति में ऐशो आराम में मग्न हो गया, लेकिन है तो मेरा भक्त। तो ऐसा नहीं क्या हो, जब सब देवता लोग गए मिलने के लिए, अच्छा हो गया जाओ तुम लोग, मेरा मुंह देखने को आना नहीं कभी इधर, गेट आउट फ्रॉम हियर, ऐसा नहीं बोला। तो फिर भगवान ने जन्म लिया अदिति के पेट में वामन भट्टू के रूप में, इस समस्या को समाधान करने के लिए। तो उस समय कौन दैत्य था? बलि। बलि राजा ने जैसे ही ये दुर्वासा मुनि की देखा कि अपराध हुआ, तुरंत बलि राजा ने आक्रमण किया और सारा सब छीन लिया। उसके बाद में बलि ने बहुत यज्ञ किए, बहुत सारे यज्ञ किए, और जितने यज्ञ में ब्राह्मण थे सबको संतुष्ट किया, सबकी सेवा किया, सबको दान किया, अच्छे तरह से सबको सत्कार किया, देखभाल किया, और देव ब्राह्मणों को भर भर के आशीर्वाद प्राप्त किया। और फिर उसको यज्ञ करने के बाद में एक दिव्य रथ प्राप्त हो गया, एक दिव्य कवच प्राप्त हो गया, दिव्य मुकुट प्राप्त हो गया, दिव्य त्रोणीर प्राप्त हो गया, धनुष्य प्राप्त हो गया, मतलब सब कुछ दिव्य चमकता हुआ प्रकाशमान। और वो सब लेकर वो दिव्य रथ में बैठकर वो देवताओं पर आक्रमण करने के लिए आया। अरे उस समय जब आया वो इतना तेज था उसके ऊपर, इतना शक्ति, इतना प्रकाश, वो देखकर ही देवता लोग डर गए, इतना प्रभावी था उसका। और उन्होंने डिस्कशन किया कि अभी युद्ध नहीं करना है, युद्ध करेंगे तो खत्म हो जाएंगे, मेरा बचाव भी खत्म हो जाएगा। और देवता लोग युद्ध रोड छोड़कर भाग गए। उसके बाद की कहानी कि वो रोकर चले गए, ये बीच में बताना भूल गया मैं। मतलब पहली बार तो अपराध किया, उसके बाद बलि महाराज ने तपस्या किया, यज्ञ किया, लौट के आया शक्तिमान बनकर, आशीर्वाद प्राप्त करके हमला किया, वो देवता ने युद्ध ही नहीं किया, भाग गए सब लोग। तो फिर वही जो है बलि महाराज वो यज्ञ करने के लिए बैठे। क्यों बैठे यज्ञ करने के लिए? क्योंकि उनको इंद्र बनना था। अभी उन्होंने क्या किया है, देवताओं का जितना साम्राज्य है सब ले लिया अपना, सब उसका हो गया अभी वो। लेकिन देवताओं ने दिल से अपना इंद्र नहीं समझा उनको। इंद्र कोई व्यक्ति नहीं है, ये रामचरित इंद्र कौन है? पोस्ट है, पोस्ट। जैसे डायरेक्टर कोई व्यक्ति नहीं है, डायरेक्टर एक पोस्ट है, उस पर कोई जाके बैठता है। चलो आज डॉक्टर संघ के डायरेक्टर है, उसके बजाय मिस्टर तलवार डायरेक्टर थे, आगे जाके और कोई बनेगा। वैसे इंद्र पोस्ट है। तो देवताओं ने राज्य तो हार गए, लेकिन दिल से बलि को इंद्र ने माना कि यह अपना राजा है, आज से हम लोग इसका सुनेंगे। तो वो देवता लोगों की तरफ से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, इसलिए बलि 100 यज्ञ कर रहा था, 100 यज्ञ। उसके गुरु थे शुक्राचार्य, उसने उसको बताया कि देखो तुमको इंद्रपद चाहिए, प्रॉपर्टी तो सब मिल गया तुमको तीनों लोग का, इंद्रपद चाहिए तो तुमको तपस्या करनी होगी, यज्ञ करना होगा। और 100 यज्ञ करोगे आप तो 100 यज्ञ के बाद में देवता लोग अपने आप दिल से आपको इंद्र बल के स्वीकार करेंगे, आप इंद्र बन जाओगे। तो वो यज्ञ कर रहे हैं, एक एक करके यज्ञ उसका पूरा होते जा रहा है। बीच में इधर वामन का जन्म हुआ, अदिति के गर्भ से कश्यप मुनि के पुत्र के रूप में, छोटे से सुंदर ब्राह्मण के रूप में। इतने सुंदर थे वो, इतने सुंदर थे, सुनहरे रंग का, आगे आइए, सुनहरी रंग का प्रकाश था उसके शरीर से, और जो हिरण का होता ना चर्म, उसको कहते हैं मृगाजिन, मृगाजिन पहने हुए, हाथ में कमंडल, एक हाथ में छतरी, सुनहरे बाल, छोटी सी कद, स्वर्ण कांति, इतना तेज जन्म हुआ। उन्होंने माता पिता का प्रदक्षिणा किया और सीधे पहुंचे बलि महाराज के यज्ञ के पास। बलि महाराज जो है वो कई हजारों ऋषियों को और मुनियों को लेकर शुक्राचार्य के नेतृत्व में यज्ञ कर रहे हैं। हम लोग कैसा करते हैं, एक यज्ञ करते हैं, 25-30 लोग बैठते हैं। भाई लास्ट टाइम 2 यज्ञ किए थे, हाँ, यहाँ एक वहाँ एक, और उसमें कुछ 200 लोग बैठे थे। ये कैसे, हजारों कुंड, हर एक कुंड पे एक ऋषि बैठा हुआ है और बीच में बड़े स्थान पर शुक्राचार्य बैठे हैं, वो यहाँ से गाइड कर रहे हैं, मेन मंत्र वो बोल रहे हैं, बाद में साहा, सब लोग हरे अपने अपने यज्ञ में, और वहाँ हरेक यज्ञ के पास बहुत लोग बैठे हुए हैं। ऐसा पूरा सिटी है, पूरा सिटी, जैसे मीरा रोड के पूरे शहर में सब जगह यज्ञ कुंडी बने हुए, तो कैसा लगेगा आपको? स्टेशन से आए तो भी यज्ञ कुंड, हाईवे से आए तो भी यज्ञ कुंड, ऐसा लगे। तो वहाँ से लेकर 4-4 किलोमीटर तक पूरे यज्ञशाला बनी हुई है, उसके पीछे फिर यज्ञशाला के अंदर ऋषियों को रहने की व्यवस्था है, उसके एक साइड पे फिर करोड़ों लोगों की खाने की व्यवस्था है, ऐसा सब भव्य अरेंजमेंट था। और उसमें बीच में बलि महाराज प्रधान यजमान बैठे हुए हैं शुक्राचार्य के साथ में, और उस सारी बड़ी सभा के अंदर वामन देव प्रवेश करते हैं। ऐसा नहीं कि वो एक ही ब्राह्मण थे, बहुत सारे ब्राह्मण आए वहां पर, सबका सत्कार किया गया। लेकिन जब वामन देव वहां पर आए तो उसका तेज और उसका प्रकाश देखकर सब लोग यज्ञ छोड़कर खड़े हो गए। सिग्नम समझो, अभी हमारा यहाँ पर लेक्चर चल रहा है, वहां नरेंद्र मोदी आते हैं समझो वहां से, तो मैं भी कथा बंद करके खड़ा हो जाऊंगा, आप सब लोग खड़े हो जाएंगे, कोई बोलने की जरूरत पड़ेगी नहीं, अरे क्या तुम लोग, वो तो खड़े मोदी आके खड़े हो जाओ, ऐसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही स्वतः है राधानाथ स्वामी महाराज आ गए समझो, तो मैं भी कथा बंद करके नीचे आ जाऊंगा, आप भी सब लोग खड़े हो जाएंगे, सब लोग प्रणाम करेंगे। वैसे बलि महाराज और सारे ब्राह्मण जितने भी थे सब लोग अपने आप स्वतः खड़े हो गए, ऐसे हाथ जोड़कर देखते रहे उसके तेज को। बलि महाराज आ गया है, उन्होंने सत्कार किया, पैर धोए उसके, मीठे मीठे वचन बोले, उनको आसन दिया, बोले बैठिए विप्रवर, बैठिए, यज्ञ अभी हमारा समाप्त होने वाला है। बराबर टाइम पे आया, जब भी यज्ञ में दक्षिणा देने का समय आता है ना यज्ञ की पूर्ति करने के लिए, तभी वहां पधारे वो। तो फिर वो समय आया जब मंत्र बोलकर, आपको मंत्र कहकर जलांजलि देनी होती है ना, जल अर्पण करके फिर दान देते हैं। तो बलि महाराज ने पूछा, ब्राह्मण देवता आपको क्या दक्षिणा चाहिए आप बताइए। तो वो कहते हैं कि मुझे 3 पग भूमि की जरूरत है, मैं 3 पग भूमि चाहता हूँ। तो बलि देखने लगा, रे इनका पैर कितने, देखता हूँ जरा साइज क्या है, इतने से पैर, इतना सा कद, और तीन पैर की भूमि में करेंगे क्या आप? वो कहते हैं यज्ञ करेंगे, रोज का हवन करेंगे, नित्य नित्य होम करेंगे, भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। तो कहते हैं अरे जब मैंने आपको देखा तो आपको देख के लगा कि आप कितने विद्वान हो, कितने ज्ञानी हो, सारे ब्रह्मांड का ज्ञान आपको है, ऐसा मुझे लग रहा था आपके तेज को देखकर। लेकिन जब आप मुझे मांग रहे हो कुछ, वो देखकर लगता है कि आप में बिल्कुल बुद्धि नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं त्रिलोकी का राजा हूं। आप अगर बोलेंगे ना मुझे एक लोक दे दो, लोक पृथ्वी लोक दे दो मुझे, तो मैं दे सकता हूं आपको, इतनी शक्ति है मेरे पास। मैं केवल इस भूमि का राजा नहीं हूं, त्रिलोकी का राजा हूं, सारे देवताओं के राज्य भी सब मेरे हैं। आप एक राज्य मांगते तो मैं दे देता आपको। और वैसे भी राजा के पास आके कभी छोटी सी बात नहीं मांगनी चाहिए, और राजा का भी थोड़ा सा इज्जत का प्रश्न है उसके अंदर। तो ब्राह्मण देवता क्या उत्तर दे उसको? वो कहते हैं जो जिसको जरूरत है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। व्यक्ति को जितनी जरूरत है उतना ही लेना चाहिए, जरूरत से ज्यादा अधिक लेने पर आदमी दुखी हो जाता है और संतुष्ट होता नहीं है वो। जब उसके पास जरूरत से अधिक चीज होती है तो उसको लगता है कि मैं अभी और संतुष्ट हो जाऊंगा, लेकिन वो संतुष्ट नहीं होता है, दुखी होने लगता है। इसका प्रूफ क्या है? वो कहते हैं इसका प्रूफ आप खुद हो। कैसे? आपको तीन लोगों का राज्य मिल चुका है, आप संतुष्ट हो गया? संतुष्ट नहीं हो, आपको इंद्र बनना है। तीन लोगों का राज्य मिल गया आपको, सब देवता लोग भाग गए, आप ही राजा बन गए, फिर भी आपको उनके मन में इंद्र बनने का भाग्य चाहिए। वो लोग आपको यस सर, इंद्र महाराज थैंक यू वेरी मच, ऐसा आपको सलाम करना चाहिए। उनके जो लोग आपके शत्रु हैं, जिनको आप परास्त कर चुके हो, जिनका राज्य छीन चुके हो, वो आपको दिल से इंद्र मानना चाहिए, ऐसे आपकी इच्छा है कि नहीं? इसलिए आप इतना सौ यज्ञ कर रहे हो। तो कहते जाने दो ना, वो माने नहीं माने, मैं राजा तो हूं ही, आई एम हैप्पी नाउ, मेरा राज्य मिल गया उनका सबका मेरा, ऐसा तो नहीं है ना। तो फिर भी वो कहते हैं मुझे तो तीन पक्की भूमि चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि बलि महाराज ने, बलि महाराज को उनके कारण, उनके रूप में, उनका निमित्त बनाकर वामन देव ने हम सबको ये शिक्षा दिया है। वो कहते हैं कि जो भगवान की इच्छा से और आपके कर्मों से आपके पास में है, उसमें ही आपको संतुष्ट रहना चाहिए। दूसरे के पास में क्या है, बाजू वाले के पास में क्या है, वो देख के दुखी नहीं होना चाहिए। ये जानकर कि यही भगवान की इच्छा, यही मेरी योग्यता है, मुझे मिल रहा है वही मेरी योग्यता है, मेरी योग्यता के बिना कम मुझे कभी नहीं मिलेगा और योग्यता के ज्यादा भी नहीं मिलेगा चाहते हुए भी। ये जिसको पता है वही संतुष्ट रह सकता है। जिसको लगता है कि जो उसे मिल रहा है वो भी मुझे मिलना चाहिए, जो मुझे मिल रहा है वो तो मिलना ही चाहिए, लेकिन जो मुझे मिल रहा है वो भी मुझे मिलना चाहिए, और मुझसे अधिक मेरे पास में किसी को नहीं मिलना चाहिए, ये असुरों की भावना होती है। असुर क्या करते हैं, अपने जेब में क्या देखते नहीं है, तुम्हारे जेब में क्या है पहले देखते हैं, और वो मुझे मिलना चाहिए वो पहले देखते हैं, why not me, why you? और जरूरत से अगर अपनी आज की स्थिति में हम संतुष्ट नहीं है, अगर अपने मन को नहीं समझा सके, तो वो कहते हैं त्रिलोक का साम्राज्य मिलने पर भी आप संतुष्ट नहीं हो सकते। जो जो आपको दिखाई पड़ रहा है वो सब कुछ आपका हो गया, फिर भी आप संतुष्ट नहीं हो सकते। तो बलि महाराज को फिर भी ये बात जची नहीं, बोलते तुम फिर भी तुम बुद्धि कम वाले आदमी हो, क्योंकि तुम मुझसे और कुछ बहुत मांग सकते थे और मैं दे भी देता आपको, लेकिन आपको उतनी बुद्धि नहीं लगती मुझे। उतने में वहां से कौन आए, शुक्राचार्य आए, उसके गुरु भाग के आए वो, और बोले बलि कान में बोले उसके, अरे मूर्ख बलि तो क्या कह रहा, तुझे पता है? जो पता नहीं ये कौन है, ये विष्णु है, ये विष्णु बालक के रूप में तुम्हारे सामने आया है, ये तुम्हें छल करने के लिए यहां पर आया है, और ये तुम्हें दोन कदम में तीन कदम में सारी तुम्हें जितनी पृथ्वी स्वर्ग नरक तुमने नाप लिया है सब कुछ खत्म कर देंगे ये, और तुम लाचार भिखारी बन जाओगे, मत देना उसको वो जल जो है मंत्र बोलकर मत देना। अभियान धर्म संकट, पहले लग रहा था कि बालक है, इसके इतने नन्हे नन्हे कदम है, उससे तीन कदम भूमि मांग रहा है, क्या कुछ भी नहीं है, और अभी गुरु कान में बोल रहे हैं मत दो उसको, मत दो, अभी भी समय नहीं गया, अभी भी तुम्हारा वो समय नहीं आया कि आपने मंत्र बोल के हो गया है, मंत्र बोलना नहीं आप, इस समय पर अभी क्या करना चाहिए? गुरुजी है जो इतना सारा यज्ञ करके आज तक इतना आशीर्वाद देकर अब यहां तक लेके आए हैं, वो भी कान में बोल रहे हैं नहीं करना चाहिए। तो बलि महाराज विचार करते हैं। अब ये बलि महाराज कौन है? हमारे प्रहलाद जी थे ना, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र बलि। और प्रहलाद जी को भगवान ने वादा किया था कि तुम्हारी 21 पीढ़ियां मैं उद्धार दूंगा, तार दूंगा उसको। तो वो है तो दैत्य, दैत्य कुल में जन्म हुआ है, लेकिन है भगवान के वैष्णव भक्त है वो। दैत्य लोगों के ऊपर से साइड से देवताओं पर आक्रमण भी कर रहे हैं, लेकिन है भक्त भगवान के। विभीषण कैसे, रावण के भाई हैं, लंका में रहते हैं, लेकिन है वैष्णव। वैसे ये भी थे, उन्होंने जीवन में समझ लिया था कि सारे यज्ञ वगैरह जो हम करते हैं अल्टीमेटली वो विष्णु के समाधान के लिए करते हैं, और करना भी चाहिए, ये जानकारी थी उसको। दैत्य होने पर भी उनको पूरा पता था कि जितने भी यज्ञ हम करते हैं, होम हवन करते हैं, उसका लक्ष्य जो है वो विष्णु को संतुष्ट करना होता है। तो वो सोचते हैं मन में, उसका जो सोच है इस समय जो चल रही है मन में, वो भागवत में बहुत महत्वपूर्ण है। हमको समझना है कथा में कि बलि महाराज का मंतव्य क्या था, बलि महाराज की भावना क्या थी, और भगवान ने उसको कैसे स्वीकार किया। मैंने शुरुआत कहां से की थी? भावना के ऊपर, कि किस एक व्यक्ति की भावना कैसी होनी चाहिए और कैसे उसको ही भगवान देखते हैं। फिर आपकी जाति पाति धर्म देश भाषा नहीं देखते भगवान, ये भी देखते नहीं कि आप राक्षस हो के देवता हो। अभी बलि महाराज कौन है? दैत्य है, देवताओं का शत्रु है वो, देवताओं पर आक्रमण करके उनको बेघर कर दिया उसने, और देवताओं का रक्षण करने के लिए स्वयं विष्णु जन्म लिए हुए हैं, वामन देव। देखो सिनेरियो कैसा है, और अभी संपर्क किससे हो रहा है, संवाद किसका हो रहा है, उन्हीं भगवान का जो देवताओं को बचाने के लिए छल करके ब्राह्मण मन के सामने आए हैं, उनका संपर्क अभी डायरेक्ट बलि महाराज से हो रहा है, बातें हो रही है 1-to-1। और शुक्राचार्य पीछे से बोल रहे हैं, सामने से 3 पग भूमि मांग रहे हैं, तो क्या विचार कर रहे हो? वो ये विचार कर रहे हैं, अगर मैंने इतना सारा जीवन में समझ लिया है कि इनको ही संतुष्ट करना है, तो मेरा ये परम भाग्य है कि आज ये मेरे दरवाजे पे भिक्षुक बनकर आए हैं, जिनके लिए यज्ञ करना चाहिए, जो यज्ञपति हैं, जो यज्ञ के लक्ष्य हैं, यज्ञ का उद्देश्य है, वो मेरे सामने भिक्षुक बन के आए हैं, इससे बड़ा मेरा भाग्य क्या हो सकता है। तो ये सोचकर उन्होंने अपने तथाकथित गुरु थे शुक्राचार्य, इनकी आज्ञा को भी तोड़ दिया। उन्होंने सोचा कि गुरु का कर्तव्य क्या होता है? शिष्य को भगवान विष्णु की कृपा देना, शिष्य को भगवान विष्णु से जोड़ देना, शिष्य को भगवान विष्णु तक पहुंचाना, उसके लिए गाइड करना। और विष्णु मेरे सामने खड़े हैं, दान मांग रहे हैं भिक्षुक बनकर, और ये कह रहे हैं कि मत दो, मतलब मुझे जीवन के उद्देश्य से परावृत्त कर रहे हैं, मेरे जीवन का उद्देश्य मेरे सामने आ गया है, अभी मेरा लक्ष्य मेरे सामने खड़ा हो गया है, और ये मेरे गुरु मुझे उनसे जोड़ने के बदले में तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मैं गुरु की आज्ञा पालन नहीं करूंगा, और मैं वामन देव को जो मांगा है वो दूंगा। तो ये शास्त्र में ऐसी एक ही घटना है जहां पर एक महान व्यक्ति ने गुरु जी की आज्ञा को तोड़ दिया। तो आचार्य समझाते हैं कि ये ऐसी एक ही घटना है और ऐसा एक ही कारण है जब एक शिष्य गुरु जी की आज्ञा तोड़ सकता है। जब गुरु जी उसको भगवान के खिलाफ आज्ञा दें और भगवान से परावृत्त करने का प्रयास करें, तभी शिष्य जो है उनके गुरु होने पर भी उनकी आज्ञा तोड़ सकता है, उससे कोई अपराध नहीं हो सकता है। अन्य समय पर जब शिष्य गुरु जी की आज्ञा तोड़ता है तो वो अपराध माना जाता है और व्यक्ति की भक्ति नष्ट होती है, व्यक्ति का सारा साधन नष्ट हो जाता है, जीवन के लक्ष्य से वो दूर हट जाता है अगर वो गुरु जी की आज्ञा करता है। लेकिन ये ऐसे प्रसंग है जिसमें भागवत विधि में वर्णन आता है कि किस स्थिति में हम गुरु जी की आज्ञा तोड़ सकते हैं अगर वो हमको भगवान से दूर करने का प्रयास करेंगे। तो गुरु जी की आज्ञा तोड़कर वो जब दान देने आगे बढ़ते हैं जल छोड़ने के लिए, तो उधर गुरु जी शाप दे रहे पीछे से, बलि तू दरिद्र हो जाएगा, तू भिखारी बनेगा, दर दर भटकेगा, तेरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो मन में सोचता है चलेगा, कितनी महान चीज है। उसको पता है कि जो जो मैं सोचता हूं मेरा है वो सब अभी नष्ट होने वाला है। आप मुकेश अंबानी को बोलेंगे आपके पास 4 लाख करोड़ की जो प्रॉपर्टी है वो एक क्षण के बाद नष्ट होकर आप रास्ते पर आने वाले हो, तो कितनी बड़ी टेंशन की बात है। सोचो आप, नरेंद्र मोदी को अभी जाके बोलेंगे कि आप 1 मिनट के बाद प्रधानमंत्री नहीं लेंगे, सोचो डिजास्टर। लेकिन क्योंकि ये भक्त है भगवान का, वो जानते हैं कि मेरा जो भी कुछ है वो उनका दिया हुआ है, और मैं जो भी समझता हूँ कि देने वाला वो भी उनका ही है। ये तो मैं सोचता हूँ कि मेरा है इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैं दे रहा हूँ, लेकिन मैं अगर ये जानता हूँ कि मेरा है ही नहीं तो फिर क्या लेना और क्या देना और क्या मेरा और क्या तेरा। तो जल्द का दान करके मंत्र बोलते हैं, दान का मंत्र कहकर दान देते हैं, बोलो ले लो। तो भगवान उसी क्षण में धीरे धीरे बड़े बड़े होने लगते हैं। इतने से बालक थे, कुछ ही क्षणों में इतने बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए कि आकाश नाप लिया बुद्ध उन्होंने, उनकी खबर कद ने उनको देखना भी मुमकिन नहीं हुआ, सब लोग ऐसे गिर रहे हैं पीछे, इतने ऊंचे हो गए वो। फिर बोलते हैं अब ले लो कदम, अभी उठाओ कदम, मतलब अभी नापना है ना, ले लो। तो भगवान एक कदम में पूरा पाताल और पृथ्वी नाप लेते हैं एक ही कदम में, और दूसरे कदम में पूरा स्वर्ग लोग जितने भी है वो नाप लेते हैं, जितना भी बलि का प्रॉपर्टी था, जितने कोने कोने में जितना प्रॉपर्टी था वो 2 कदम में भगवान ने नाप लिया पूरा। और कहते हैं भगवान अब बताओ तीसरा कदम कहाँ रखो, तुम्हारी प्रॉपर्टी तो समाप्त हो गई, तुमने हमारे साथ छल किया है, तुमने 3 पग भूमि का वादा किया था और 2 पग में तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, बताओ तीसरा पग कहाँ रखो, नहीं तो तुम अपराधी हो जाओगे, तुमने ब्राह्मण को शब्द दिया है और तुम पूरा नहीं कर पा रहे हो। तो बलि महाराज अभी क्या विचार कर रहे हैं ये भी सोचना बहुत जरूरी है। बलि महाराज ये विचार कर रहे हैं कि मैं तो ये सोच रहा था कि ये सब कुछ मेरा था, मतलब मेरा अहम है ना अहम, इस अहम की वजह से मैं सोच रहा था कि ये पाताल पृथ्वी नरक स्वर्ग जो है ये सब मैंने जीत लिया है, ये सब मेरा है। लेकिन ये मैं जो मेरा जो अहम है जो ये सोचता है कि ये मेरा है वही गलत है, मेरे अहम की वजह से मैं सोच रहा हूं कि मैं हूं और मेरा है और मैं दे रहा हूं दान दे रहा हूं किसी को, तो अभी जो अहम है वही मैं देना चाहता हूं आपको ताकि सब कुछ बराबर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा सब कुछ। इस तरह से अहम का मतलब क्या होता है, एक तरह से सर होता है सर, हाँ सर झुकाने का मतलब क्या, नम्र बनना। सर झुकाने से अपना यही बताते हैं हम कि हमारे पास अभी आपके सामने तो कम से कम अहम नहीं है, जैसे गुरु जी आए हमारे साथ तुरंत हम लोग दंडवत करते हैं कि होंगे हम डायरेक्टर यहाँ के लेकिन आपके सामने तो कोई भी कुछ भी नहीं है, आप हमारे गुरु हैं। तो उन्हें कहा कि अभी तीसरा पैर हमारे सर पे रखिए आप, मतलब मैं मेरे अहम को आपके चरणों में दे रहा हूं, अभी मेरा कुछ भी ना, मैं भी खुद आपका हो गया, अभी ये सब कुछ तो दे दिया मैंने लेकिन फिर भी मैं मेरा रह गया ना अब तक, अब तो मैं भी अपने आप को आपके चरणों में अर्पण कर रहा हूं। उसको कहते हैं आत्मसमर्पण, आत्मनिवेदन, नवदा भक्ति में आखिरी अंग है आत्मनिवेदन, स्वयं को तन मन धन से अर्पण कर देना। और बलि महाराज उसके आचार्य हैं, सबसे प्रधान उदाहरण उसके बलि महाराज हैं। तो इस तरह से बलि महाराज ने आत्मसमर्पण किया। लोग जो है आप लोग हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कहानी, कहानी समाप्त हुई कि अभी है कहानी, बताइए बताइए बताइए, कितने लोगों को पता है कि कहानी अभी खत्म हो गई कि कहानी आगे है इसके, क्या आगे बताइए। स्कूल में हम लोग पढ़ते थे कि भगवान ने बलि को सर पे पांव रख के नरक में भेज दिया और देवताओं को अपना राज्य लौटा दिया और स्टोरी खत्म। स्टोरी यहां खत्म नहीं होती है, ऐसे कहते हैं कि जब बलि महाराज ने 2 कदम उठाने के बाद में और कुछ बचा नहीं उसके पास में, तो देवता लोग बड़े खुश हो गए, अरे बाप रे अच्छा हो गया, अपना जो दुश्मन का राजा है वो तो अभी भगवान ने उसको अवतार लेकर अभी परास्त कर दिया, उसको पूरा एकदम नामुष्क कर दिया उसको पूरा। तो वरुण देव आए तुरंत, वरुण देव ने वरुण पाश से बांध दिया उसको पूरा और एक बंदी बनाकर उसको घसीट को लेके आने लगे। बोलो आप सोच रहे हैं, जो त्रिलोकी का राजा था 2 क्षण पहले, अभी अभी इंद्र बनने वाला था वो यज्ञ की पूर्ति होने के बाद, उसके सारे राजा लोग बैठे हुए हैं, सेनापति मंत्री सब लोग बैठे हुए हैं, उसकी पत्नियां बैठे हुए हैं, उनके बच्चे बैठे हुए हैं जिनको हरा दिया है, वो देवता लोग छुप छुप के बैठे बैठ कर देख रहे हैं, उनके सबके सामने उनका क्या कहते हैं उसको गर्भ हरण होता है, बंदी बनाकर बांधकर घसीटकर कैदी बनाकर लेके जा रहे हैं उसको। उस समय बलि बांधा क्या सोच रहे हैं? लोगों के सामने लग रहा है कि बलि बांधा तो कितना मानहानि हो रहा है, कितना अपमान हो रहा है, कितना गर्व का नष्ट हो रहा है उनका, जितना अधिकार था, जितना रिस्पेक्ट था, सब खत्म हो गया पूरा। नामुश्की बोलते, नामुश्की नामुश्की हो गई उनकी। लेकिन बलि का वर्णन शास्त्र में आता है, बलि हृदय में बड़े प्रसन्न थे, बोले भगवान का दर्शन हुआ मुझे आज और भगवान ने मुझे स्वीकार कर लिया, अपना बना लिया। तो लोगों को लगता है कि उसका अपमान करके पैर से सर पे कदम रख के उसको दबोच दिया नरक में दुख भोगने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जब बलि ने सबके सामने आत्मसमर्पण किया तो भगवान इतने प्रसन्न हो गए उसके ऊपर। भगवान ने कहा, बलि तुम्हारा सब कुछ तो मैंने छीन लिया, लेकिन तुमने इंद्र बनने की इच्छा की थी, मैं उसे पूरा करूंगा। मैं तुम्हें ऐसा लोक दूंगा जो नरक लोक के बीच में होगा, लेकिन इंद्र के अमरावती लोक से भी वो श्रेष्ठ होगा, नंबर वन, जहां पर इंद्र को राज्य वापस मिलेगा, अभी अपना राज्य वापस मिलेगा, वो वापस अमरावती में राजा बन के जाएंगे, लेकिन अमरावती से भी श्रेष्ठ राज्य तुम्हारा होगा, सुतल लोक में नीचे होगा। मतलब जाएंगे आप नरकों की ओर, नरक की दिशा में जाएंगे, आपका लोक भी वहां रहेगा, लेकिन वो स्वर्ग से भी महान रहेगा। आपका राज्य का ऐश्वर्य इतना महान रहेगा कि ये हमारे जो इंद्र है ना, यही आप पर ईर्ष्या करेंगे, उसको देखकर तो शायद आक्रमण भी कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको मेरा चक्र जो है पहले से ही दे रहा हूं। वो चक्र जो है आपके राज्य की सुरक्षा करेगा, आपके राज्य की ओर कोई भी तिरछी नजर देख नहीं पाएगा, मतलब क्या कहते हैं उसको, गलत नजर से देख नहीं पाएगा। आक्रमण करना तो दूर की बात है, मैं आपको मेरा बॉडीगार्ड पहले से दिख कर रखता हूं, ताकि ये हमारे जो इंद्र हैं, देवता लोग हैं, आपका संपत्ति ऐश्वर्य देखकर थोड़ा सा ईर्ष्या करेंगे, द्वेष करेंगे और कुछ चाहेंगे कि हमको होना चाहिए, आक्रमण करेंगे तो चक्र ही संभाल लेंगे उनको, आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। उसके बाद में कहते कि आप राक्षस के बीच में रहेंगे, आपकी पत्नियां राक्षस रहेंगी, आपकी जितनी भी परिवार है सब राक्षस रहेंगे, फिर भी आपके मति पर कभी भी उनके संग का गलत परिणाम नहीं होगा, आपकी जो भक्ति है वो ऐसी बनी रहेगी। 36,000 साल तक आप जिएंगे, लेकिन आपकी भक्ति आज जो है, आज जिस तरह से आप आत्मसमर्पण के भाव में हो, वैसे ही आप बिल्कुल संग के बुरे परिणाम के बिना वैसे ही रहोगे एंड तक। और जितना समय आप यहां पर रहोगे, पूरा भोग आपको मिलेगा, जो आपको चाहिए सब कुछ ऐश्वर्य आपका है, वो सब ऐश्वर्य भोगने के बाद भी आपकी मति दूषित नहीं होगी। कभी कभी होता है ना, बहुत पैसा आ गया तो दिमाग खराब हो जाता है, अच्छे अच्छे आदमी बिगड़ जाते हैं, फिर क्या क्या गलत आदतें लगती हैं उनको। प्रहलाद को भी ये वरदान दिया था भगवान ने, ध्रुव को भी वरदान दिया था, कितना ऐश्वर्य मिलेगा आपको, लेकिन ऐश्वर्य के प्रभाव से आपका मति जो है वो दूषित नहीं होगा। और आगे जाके बताया कि मैं स्वयं तुम्हारा द्वारपाल बनूंगा, गेट कीपर बनूंगा, जिस गेट से आप आओगे उस गेट की रक्षा करूंगा। आप सोचो जरा, जो वैकुंठाधिपति भगवान है, जिन्होंने एक तरह से छल किया उनके साथ ना, छल करके सब कुछ छीन लिया, लेकिन भगवान क्या, मैंने शुरू से क्या बताया था, वो भाव देखते हैं हमेशा, चाहे वो राक्षस हो, बाहरी दृष्टि से देवताओं के पक्ष में जाकर उन्होंने उसको छल करके सब कुछ छीन भी लिया उसका, लेकिन उसको ऐसा वरदान दिया उसके बाद में, देवता लोग खुश हो गए, अपना राज्य वापस मिल गया, देवता घर पे चले गए, लेकिन देवताओं के सामने कई गुना अधिक ऐश्वर्य उन्होंने बलि को दिया और स्वयं को अपना द्वारपाल बना दिया उसका। अभी कैसा हुआ, बलि महाराज चले गए सुतल लोक में, राजा बन गए और रहने लगे, कभी इस द्वार से आ रहे हैं, कभी उस द्वार से आ रहे हैं, कभी वहां से आ रहे हैं, तो ये विष्णु भगवान भाग रहे हैं कि महाराज जी वो द्वार से आएंगे तो वहां पर मुझे पहले खड़े होना चाहिए जाके, तो हर रोज भाग रहे हैं, पता नहीं कौन से गेट से आएंगे। अभी क्या हुआ कि वैकुंठ में लक्ष्मी देवी जानती थी कि हमारे भगवान तो नीचे लीला करने गए हैं, देवताओं के पक्ष में बलि महाराज को क्या है उसका प्रभाव नष्ट करने के लिए गए हैं, लौट के नहीं आए अब तक, लीला कब की समाप्त हो गई। बाद में पता चला कि ये तो वो लीला समाप्त करने के बाद आशीर्वाद देके खुद द्वारपाल बनकर गेट के पर बन के नीचे चले गए। तो फिर लक्ष्मी देवी अपने पति को वापस लाने के लिए सुतल लोक में आती है, बलि महाराज को रिक्वेस्ट करती है, ऑर्डर नहीं करती है, मैं लक्ष्मी हूं आदेश देती हूं, ऐसा नहीं बोलती हूँ, वो जानते हैं मेरे पति देव ने उनको वरदान दिया हुआ है, ये तो पूजनीय है, वंदनीय है, ये वैष्णव भक्त है, ये मैं लक्ष्मी जरूर हूं, लेकिन मेरे भक्त मेरे लिए पूजनीय होते हैं, मेरे पति के भक्त मेरे लिए पूजनीय होते हैं। हम अपने ऊपर से भी अधिक आदर उनका करते हैं, भगवान जो होते हैं। तो उन्होंने भगवान के द्वारा ऐसे वरदान प्राप्त किए हुए महान भक्त को वो जाके विनती करती है कि आपके साथ हमारी एक ही दरख्वास्त है, एक ही रिक्वेस्ट है आपके लिए। तो उनकी पूजा करते हैं बलि महाराज। वो पूछते, माता क्या करना चाहिए बताओ, आज्ञा करो। वो कहते हैं, आप ना रोज केवल एक ही गेट से निकलना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ मेरे पति भाग रहे हैं यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, पसीने पसीने हो रहे हैं, क्योंकि निश्चित कुछ नहीं है कहाँ से किस गेट से आएंगे। कम से कम आप रोज एक ही गेट से आना तो वहीं बेचारे खड़े रहेंगे। देखो आप क्या लक्ष्मी जी मांग रही है। इतने महान भक्त थे वो बलि महाराज। तो बलि महाराज का भाव जो है ना वो समझना बहुत जरूरी है। जैसे किसी को पीटा जा रहा है समझो, किसी को बांध के अरेस्ट करके ले जेल में लेके जा रहे हैं, तो आप लोगों को क्या लगता होगा, बट कितना दुखी होगा आदमी, उसको अरेस्ट किया जा रहा है, उसको बांध के घसीट के लेके जा रहे हैं। लेकिन वो क्या सोच रहे हैं कि मेरा परम भाग्य है कि मेरे को विष्णु ने स्वीकार कर लिया। हम लोग जेल जा रहे सोचेंगे कि अच्छा हुआ हमको पुलिस ने स्वीकार कर लिया, ऐसा नहीं सोचेंगे हम। लेकिन बलि महाराज का ये मानता है, वो ये सोच रहे हैं। पहले क्या सोच रहे हैं कि अगर जीवन का लक्ष्य विष्णु है तो वही मेरे सामने खड़े हैं तो सब कुछ देना चाहिए मुझे, वो सोच रहे हैं। अरे गुरुजी ने मेरे को अच्छे समय में जागरूक कर दिया, अच्छा किया गुरु महाराज, थैंक यू वेरी मच। मैं तो पागल बन के सब देने को जा रहा था, अच्छा वो आपने मुझे सतर्क किया और सब समझा दिया, थैंक यू वेरी मच, अभी मैं कुछ नहीं दूंगा उसको। ये नहीं सोचा उसने, क्योंकि महान वैष्णव जो होते ना वो परिस्थिति के अंदर वश होकर काम नहीं करते हैं। उनकी मति जो है कितना भी विकट परिस्थिति आएंगी तो वैसी रहती है, उनका मन भगवान के मनों में चरणों में लगाया रहता है हमेशा, वो कभी वहां से चल विचल नहीं होते। प्रसंग कुछ भी आ जाए, संकट कुछ भी आ जाए, कठिनाइयां आ जाए, चुनौतियां आ जाए, कष्ट आ जाए, फिर भी वो उनका जो चेतना है, चेतना मतलब भाव जो है वो भगवान के ही चरणों में स्थिर रहता है। वो यहां से वहां उनका उनकी निष्ठा जो है वो समय के अनुसार बदलती नहीं है। हमारे कैसे होते हैं पॉलिटिशियंस, चलो बीजेपी का जोर है, सब लोग राष्ट्रवादी छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन होने का कोशिश कर रहे हैं, हमको भी लो हमको भी लो, फिर वो हारने लगेंगे तो उनको छोड़कर जो जीतने वाली पार्टी में जाने लगेंगे। मतलब क्या, उनकी निष्ठा कहीं नहीं है, उनकी निष्ठा केवल खुद के आनंद पे है, बस खुद के स्वार्थ पे निष्ठा होती है उनकी, वो पक्की होती। लेकिन जो भी कुछ हो जाए मेरा स्वार्थ जो है मैं हमेशा देखते रहूंगा, कौन कहाँ पर जलेबी मिलेगी वहां जाऊंगा, आज यहाँ मिल रही है जाऊंगा, कल वहां मिल रही है वहां जाऊंगा, कोई मेरा पक्ष नहीं है। बोलते ना वो राजकारण में कभी भी कोई परमानेंट का मित्र और परमानेंट का दोस्त शत्रु नहीं होता है, समय के अनुसार शत्रु मित्र बन जाता है और मित्र भी शत्रु बन जाता है। जहां जहां रोटी पक रही है वहां शत्रु और मित्र उस अनुसार बनता है, लेकिन भक्त लोग ऐसे नहीं होते हैं। भक्त के जीवन में ऐश्वर्य भी आ जाए तो भी भगवान के चरणों में लीन रहते वो, और दरिद्र बन जाए जैसे पांडव जंगल में गए, हाँ नंगे घूम रहे हैं, कंदमूल खा रहे हैं, कोई राज्य के राजकुमार होते हुए भी क्या मिला उनको, लेकिन तभी भी वो भगवान के भक्त रहे, और बाद में जब राजा बने तभी भी भगवान के भक्त रहे, और जब भगवान छोड़ के चले गए दुनिया, राज्य वाज सब छोड़ दिया, सीधे मोक्ष प्राप्ति के लिए चले गए, सब कुछ छोड़ के। इसका मतलब क्या हुआ कि जब जंगल में थे, जब बाद में राजा बने, बाद में भगवान छोड़ के चले गए, तीनों समय पर उनका दिल जो था वो भगवान पर ही था, उनको बाकी किस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था, भगवान के ध्यान में बने। इसलिए ऐसे कहते हैं कि जब भगवान उनको वनवास में जब मिलने को आए तो भगवान क्रोध से लाल लाल हो गए। भगवान ने ऐसा घोषणा किया कि अब मैं पूरी सृष्टि को भस्म कर दूंगा अपने भक्तों का कष्ट देख के। तो ऐसे कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने भगवान को शांत किया। युधिष्ठिर महाराज जिनको देखकर, पांडवों को देखकर भगवान इतने गुस्सा हो गया कि ये कौरवों की वजह से ऐसा सब हुआ है, मैं नष्ट कर दूंगा उनका, अभी क्या अभी नष्ट कर दूंगा। तो युधिष्ठिर ने उनको शांत कर दिया, कोई बात नहीं जो भी है ठीक है। ऐसे भक्त भगवान बोलो किसी भी समय पर विचलित नहीं होते, उनका मन उनकी निष्ठा एक जगह पर फिक्स रहती है। और हमको भी यही देखना चाहिए, वैसे हमारे पास क्या क्या धन संपत्ति क्या है हमारे पास जिस पर इतना गर्व कर सकते हैं हम लोग। अरे बलि महाराज का धन क्या था और हमारा धन क्या है, रावण का ऐश्वर्य क्या था हमारा ऐश्वर्य क्या है, कुछ भी नहीं है। हम लोग तो ऐसे उनके सामने एकदम गरीब भिखारी की तरह हैं, लेकिन फिर भी हमें अपना जो भी अपना वन रूम किचन जो है उसको कितना गर्व करते हैं हम लोग। हमारा जो लूना स्कूटर है उसके ऊपर कितना हमारे को नाज है, रोज जाके देखते हैं उसको, साफ करके देखते हैं, चेहरा दिखता है ना उसके अंदर चमकदार। हाँ, साइकिल पे भी रोज कितना हम लोग प्रेम करते हैं अपने। लेकिन ऐसे ऐसे भक्तों का वर्णन भागवत में आया है कि जिन्होंने इतना सारा ऐश्वर्य जो है चुटकी भर में निछावर कर दिया भगवान के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि आपको चीज चाहिए कि वो चीज जहां से मिलती है वो व्यक्ति चाहिए, है ना। तो ऐसी चीज तो भगवान बहुत दे सकते हैं, हम तो उनको ही अपना बना लेंगे जो सब कुछ देते हैं, मतलब जो चाहे हमको बाद में मिल सकता है ना। तो वो उस व्यक्ति पर प्रेम करते हैं जो सब चीज के मालिक हैं। अभी थोड़े मिनट बाकी है, मैं आपको बताता हूँ इसका एक छोटी सी कहानी बताता हूँ कि कैसे भक्त बुद्धिमान होता है। प्रभुपाद जी ने बताया था, क्योंकि बहुत लोग ऐसे थे इंडिया में और विदेश में भी, साधु संत लोग ऐसे थे, संप्रदाय भी थे, जो कहते थे कि यू कम टू मी आई विल मेक यू गॉड, आप हमारे संप्रदाय में आओ हम आपको भगवान बना देंगे। तो प्रभुपाद जी ने बताया कि हमारे पास आओ हम आपको भगवान से बड़ा बना देंगे, मतलब क्या, भक्त बना देंगे, क्योंकि तो भगवान भी स्वयं अपने से बड़ा अपने भक्त को मानते हैं, भगवान भी स्वयं अपने भक्त के गुलाम बन जाते हैं। देखो ना, अर्जुन के सारथी बन गए, है ना, सारथी बनना मतलब गुलाम बनने जैसा है, लात मार कर बोलते हैं उसको, ये राइट में जाओ लेफ्ट में जाओ, कुछ आवाज सुनने का चांस नहीं उधर, सारथी बन गए ना वो, सबरी के बेर खाए जाके, क्या क्या नहीं किया उन्होंने भक्त के लिए अपने। भगवान स्वयं बता रहे हैं मैं कुछ नहीं हूं, मेरा भक्त मेरा मालिक है। तो प्रभुपाद ने कहा हम आपको भगवान नहीं बनाएंगे, हम आपको भगवान से बड़ा बनाएंगे, ऐसे बताया उन्होंने। तो एक कहानी ऐसी है कि एक राजा था बहुत बड़ा, उसका बर्थडे था। हाँ, सब लोग सुन रहे हैं ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उसका बर्थडे था, तो उसने उस दिन तय कर लिया कि कल जब मेरा बर्थडे है तो मैं सूर्योदय के सामने पहले यज्ञ करूंगा ब्राह्मणों के साथ, गुरु जी के साथ, और जैसे यज्ञ समाप्त होगा सूर्योदय से सूर्यास्त तक जो भी आएगा उसको जो मांगेगा वो दान दूंगा मैं उस दिन, जो भी आएगा और कुछ भी मांगेगा सब दे दूंगा उसको। तो ये सब सुनकर बहुत लोग आए, लाइन लगाए उन्होंने, राजा ने बड़े प्रेम से क्या चाहिए, गाय चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, जेवर चाहिए, जमीन चाहिए, क्या चाहिए, वस्त्र चाहिए, अलंकार चाहिए, क्या मांगेंगे वो सबको दे दो। लोगों को बिठा के रखा था लाइन से, एक के बाद हाँ तरह आ गया, मांगा दे दिया, मांगा दे दिया, सूर्यास्त हो गया और सब लाइन खत्म हो गई। राजा बहुत संतुष्ट हो गया कि आज मैंने मेरे बर्थडे के दिन जो भी आया सबको संतुष्ट कर दिया। तो जब सब मैदान साफ हो गया तो देखा कि अरे दूर एक पेड़ के पास एक बुढ़िया खड़ी है और वो अभी तक आए नहीं, उधर ही खड़ी है वो। तो वो प्रधानमंत्री को बोलते हैं, प्रधानमंत्री जाओ उस माता को लेके आओ। तो माता को लेके आते हैं, बोले मैया तुमने तो कुछ मांगा नहीं और तुम आए ही नहीं। तो बोले नहीं आई मैं, कोई बात नहीं, मतलब मांगो मांगो क्या चाहते हो। वो कहते नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए। नहीं 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 मैया ऐसा नहीं कहना, आप बताओ क्या चाहिए, आप संकोच कर रही हो। बोले नहीं 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 आप दे नहीं पाओगे, आप जाने दो जाने दो जाने दो। तो राजा बोलता है अरे मैं दे नहीं पाऊंगा, अरे व्हाट डू यू से, मॉर्निंग से लेकर शाम तक मैं देता रहा हूँ, आप बोल रहे दे नहीं सकते, आप बताओ तो सही। अभी चैलेंज की बात होगी ना कि मैं दे सकता नहीं हूँ। तो वो कहती है मेरा बेटा बन जाओ। बोला ठीक है, बन गया आपका बेटा आज से। वो चली गई घर पे अपने, कुछ भी नहीं लिया उसने, ना अंगूठी ली ना सोना लिया कपड़ा लिया, उसने माँ बन के चली गई घर पे। राजा ने अगले दिन पूछा प्रधानमंत्री जाओ मेरी माँ कहाँ रहती है देख के आओ। प्रधानमंत्री कहा बोलते वो तो दूर गांव में झोपड़ी में रहते हैं, वो झोपड़ी में वो छेद है ऊपर से, नहीं मुझे वहाँ पर भोजन करने जाना है मैया के पास। अभी जब यहाँ पर भारत में ना एक बार वो आए थे, अभी बराक ओबामा आके चले गए ना, बराक ओबामा, उसके पहले वो बिल क्लिंटन आए थे। अरे वो सांता क्रूज एयरपोर्ट अंधेरे से लेकर से चर्च गेट तक रास्ता पूरा चकाचक नया रास्ता, पूरा डेकोरेशन और क्या क्या उसके लिए किया था, इतने खर्चे किए थे करोड़ों रुपए। वो तो एक देश का राजा है, उसके लिए एक सिटी एक शहर में कुछ किया था उसके स्वागत के लिए, ये तो राजा है देश का उस जमाने का। वो कहते हैं कि जाओ पहले मेरी माता का झोपड़ी कैंसिल करो और महल बनाओ, फिर महल बना के बाद में 100 दासियां भेजो, फिर सारे गोदाम अनाज से भर दो, फिर सारा फर्नीचर जो है हस्तिदंत का बना दो, सब जगह पर सोना चांदी होना चाहिए, और मैया के लिए अच्छे वस्त्र भेज दो, अच्छे अलंकार भेज दो, और मेरे घर से लेकर वो नए घर तक एक हाईवे बना दो, हाईवे पूरा राजमार्ग। हाँ, और फिर मैं जाऊंगा भोजन करने के लिए। तो उसके बाद तुरंत वो देख रहे, अरे राजा के लोग आ रहे हैं, उन्होंने महल बना दिया, माँ को शिफ्ट कर दिया, उसके अंदर पूरा अलंकार से कपड़े से लद दिया, उसको पूरा गोदाम भंडार से भर दिए, तिजोरियाँ भर दी, उसकी दासियाँ भेज दी कपड़ों के साथ, सबके साथ में, इतना बड़ा दीवान खाना, इतना बड़ा महल, और रास्ता बन रहा है उनके घर के सामने, देख रही हो क्या क्या चल रहा है। और फिर कुछ दिन बाद राजा आते हैं रथ में बैठकर, मैं जाके घर भोजन करने के लिए। तो उससे कुछ मांगा नहीं, मुझे महल दो, 100 दासियां दो, अनाज भर दो, दागिना दो, कपड़ा दो, फर्नीचर दो, रास्ता बनाओ, कुछ भी नहीं बोला। मैंने क्या बोला, मेरा बेटा बन जाओ बस। जो ये सब कुछ देने वाला है उसको अपना बेटा बना दिया, फिनिश्ड। तो कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं, अपने आप सब हो रहा है, कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। नहीं तो मांगना पड़ता ना, मुझे ये मुझे बनाना है तो भी मिलता था उसको, लेकिन उसके बाद फुल स्टॉप। लेकिन ये बेटा बनने के बाद क्या हुआ, नो फुल स्टॉप, जो जो जरूरत है वो सब पहुंचाया जाएगा अपने आप ही, खुद की सोच से। वो मांगने रही, कुछ भी नहीं मांगने, जैसा बालक होता है ना अपने गोद में होता है, वो कुछ मांगता है क्या, मम्मी मेरी लंगोटी टाइट हो गई है, नहीं ला लो अभी, मैं 2 महीने का हो गया हूँ, वो कुछ एप्लीकेशन देता है क्या, रोता है खाली बस। उसके लिए लंगोटी, दूध, क्या चाहिए उसको, साबुन, वो जॉनसन की पाउडर और वो आलमंड का ऑयल, और क्या चाहिए बताओ, वो मच्छरदानी और रात भर जगना, वो सो रहा है, मम्मी जग रही है, क्या लैटरिन खाप हो रही है उसकी, 50 लंगोटी लटक रही है, नई लंगोटी पहना हुआ है, कुछ मांगते जरूर पड़ते क्या, कुछ मांगते क्या बच्चा, केवल वो उस माता का बालक बना हुआ है बस, और सरेंडर है पूरा, उसके गोद में एकदम असहाय पड़ा हुआ है कि मैया आपके गोद में हूँ, मैया सारी जरूरतें पूरी करती है उसकी, कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। तो ये भक्त है भगवान का। वो भक्त क्या करता है, अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है, बस अपना बना लो, इतना ही कहता है, अपना बोली। उसके बाद उसका भगवान सारा योगक्षेमम वहाम्यहम सब देख लेते हैं उसको, और यही भक्त की महानता है। इसलिए वो भगवान से भी बढ़कर होता है। भगवान भगवान अपने भक्त की पूजा करते हैं, मत भक्ता पूजा व्याधिका, और भक्त भगवान की पूजा करता है, और दोनों में लगातार कॉम्पिटिशन चलते रहता है कि कौन किसका भक्त है। भगवान कहते हैं मैं आपका भक्त हूँ, भक्त कहते हैं मैं आपका भक्त हूँ, और इस तरह से दोनों आनंद लेते रहते हैं, और इनका संबंध जो है वो दुनिया को भी समझ नहीं सकती कि इनकी क्या है, क्या हरे कृष्ण वाले क्या करते, समझता नहीं, इतना व्रत करते हैं, लहसुन नहीं, कांदा नहीं, ये नहीं, वो नहीं, चाय नहीं, कॉफी नहीं, ये मत देखो, टीवी मत देखो, ऐसा मत पहनो, बाल मत छोड़ो, बाल बांध के रखो, कपड़ा पहनो, ऐसा करो, वैसा करो, तिलक लगाओ, इतना सारा किटकिट क्यों करते हैं लोग, क्योंकि प्रेम है उनका भगवान के ऊपर, और भगवान के प्रेम के अनुकूल जो भी है वो करते रहते हैं। और कैसे रहते हैं, जैसे देखेंगे उसको, ये चेहरे पे तेज ऐसा, इतनी खुशी, आनंद और तेज, और उसके संग में आते आपको भी अच्छा लगने लगेगा, अरे वाह अच्छे लोगों से मिले हम लोग, ऐसा है भक्त भगवान का। तो राक्षस कुल में जन्म होने पर भी वो महान होता है। विभीषण रावण का भाई था, लेकिन डरा नहीं कभी, वो अपने झोपड़ी में बैठकर राम राम जपता था। तो रावण आ गया उसके कमरे में, अरे तेरी ये हिम्मत, लंका में रहकर तू मेरे शत्रु का नाम लेता है, और सब दीवार पे लिखा है राम 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 राम, तभी क्या जवाब देगा, देख तो रहा है सब राम तो लिखा हुआ है। बोलते नहीं महाराज, ये आपका नाम लिखा है मैंने। बोले कैसे आपका नाम लिखा है, तो राम का नाम लिखा है। तो नहीं, ये आपका और भाभी का नाम लिखा है, रावण और मंदोदरी, राम सब दीवार पे लिखा है राम, ऐसा है वो। हनुमान जी भी चौंक गए, अरे इतने बड़ी लंका में जहां पर राम के शत्रु रहते हैं, एक जगह पर शंख चक्र पद्म गदा का चिन्ह है, सामने तुलसी रखी हुई है, कौन इसकी किसकी हिम्मत है ऐसी। तो उतरते हैं और मिलते हैं विभीषण से, अरे बाप रे यहाँ पर रहकर आ रहा भक्ति कर रहे हो भगवान की, कितनी हिम्मत है आपकी, कितना निर्भय हो आप, कितनी हिम्मत आपकी कि आप रावण के राज्य में बैठकर, रावण के भाई होकर, मंत्री होकर, सलाहकार होकर भी आप राम की भक्ति करते हो। मैं तो अनुकूल जगह पर रहता हूँ, वहाँ पर सब भक्त लोग रहते हैं, वहाँ पर कोई भक्ति के लिए प्रतिकूल जगह नहीं है, मैं तो अपने भक्तों के बीच में भक्ति करता हूँ, बड़ी आसान चीज़ है, लेकिन तुम जो कर रहे हो बहुत महान चीज़ कर रहे हैं। ऐसे भगवान के भक्त होते हैं, कितनी सारे प्रकार के भक्त होते हैं, और सब भक्त का एक ही स्वभाव है, अपने भगवान के बिना किसी को जीवन में चलाते नहीं, खाली भगवान ही उनके सर्वस्व है, समर्पित रहते हैं वो। और हमारे लिए ये भी जरूरी है, ये सब कथाएँ हम क्यों सुनते हैं, ये प्रेरणा लेने के लिए सुनते हैं। हम बोलते हैं प्रभु जी क्या करें, अभी क्या पैसा नहीं है, आप लोग तो पढ़े लिखे हो, भक्ति कर सकते हो, हमारे लिए कितनी समस्या है, ये सब कारण बताते रहते हैं, रीजन्स। अरे ये तो राक्षस कुल में जन्मा हुआ है, कितनी कठिनाई है उसके लिए। आप बोलेंगे अच्छा हुआ अभी भक्ति करने का टेंशन खत्म, जन्म ही राक्षस कुल में हुआ तो अभी क्या कर सकते। लेकिन भक्त लोग हटते नहीं है, उनके सामने जितनी कठिनाई आती है, प्रहलाद को आग में जलाया गया, विष दिया गया, सांप में डाला गया, हाथी के पैर के नीचे दिया गया, क्या नहीं किया उसको। हम लोग बोलते बस बाबा हरे कृष्णा थैंक यू वेरी मच, अब बाद में मत आना प्रचार करने के लिए कभी, बहुत हो गया अभी। लेकिन प्रहलाद तो तभी भी भक्ति कर रहे हैं, तभी भी भक्ति कर रहे हैं, तभी भी मांग रहे भगवान को, पूजन कर रहे हैं उनका। और भगवान बोल रहे तुमने मेरे लिए कितना कष्ट सहन किया, बोले कहाँ कष्ट सहन किया, मैं तो आपका नाम लेता रहा और कष्ट दूर होते रहे, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो आपका नाम खाली जपता रहा बस, सब कुछ आपने ही बचाया, हाथी के पैर से भी आपने बचाया, सांप के मुंह से भी आपने बचाया, आग से भी आपने बचाया, विष से भी आपने बचाया, सब आपने किया, मैंने क्या किया, ऐसे वो सोच रहा है। और आज के तारीख में जब हम पढ़ते हैं तो इतना कष्ट जो है वो आज तक किसी भक्त ने सहन नहीं किया है जितना प्रहलाद ने किया है। सब जानते हैं हम लोग कि आज तक के इतिहास में एक भक्त ने इतना अत्याचार कभी सहन नहीं किया जितना प्रहलाद ने किया। और जिसने सहन किया वो अत्याचार, वो क्या बोल रहा है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। इसलिए भगवान उसको पूजते हैं कि इतने महान मेरे भक्त हैं कि मैं खुद बोल रहा हूँ सॉरी, मेरे लिए तुमको कितना कष्ट हुआ, और वो कह रहे हैं वाई सॉरी, कोई कष्ट हुआ ही नहीं मुझे। तो ये ऐसा भक्त हमको बनना चाहिए, जैसा भक्त बनने से भगवान अपने हो जाते हैं। फिर भक्त भगवान अपने हो जाते हैं तो भय किस चीज़ का, चिंता किस चीज़ की, दुख किस चीज़ का, क्या कमी है आपको, तो सबको देने वाले आपके मित्र बन गए, आपके स्वामी बन गए, तो आपको चिंता की जरूरत क्या है। इसके लिए एक ही काम करना है, दिन रात उनके नाम का जप करना है। प्रहलाद ने भी वही किया, वो केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय बस वही बोल रहे थे। आग में हो, तूफान में हो, हत्ती के पैर नीचे हो, या विश्व के प्याले के सामने हो, तलवार के सामने हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बस खत्म, सब संकट को परास्त कर दिया उन्होंने। तो हमको भी बहुत बोलना चाहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो ये करता है वो निश्चित रूप से भगवान का हो जाता है, निश्चित रूप से निर्भय हो जाता है, और जीवन में संतुष्ट हो जाता है, और जीवन के अंत में भगवान की प्राप्ति कर लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद, हरे कृष्णा। आप में से कितने लोग मायापुर में आ रहे हैं?